नमस्ते, मैं आरव हूँ। 903 के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, द बेस्ट ऑफ मेक 75 प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द पेजेस ऑफ मेक, मार्क फ्राउनफेल्डर और गैरेथ ब्रैमन द्वारा संपादित एक संकलनात्मक DIY पुस्तक है। यह मेक पत्रिका के शुरुआती 10 खंडों से चुनी गई 75 परियोजनाओं को एक जगह लाती है। इसका उद्देश्य पाठक को तैयार उत्पाद खरीदने के बजाय उपकरणों, रोजमर्रा की वस्तुओं, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटिंग के साथ प्रयोग करके चीजें समझने और बनाने के लिए प्रेरित करना है। यह कोई एकल तकनीकी पाठ्यपुस्तक या क्रमबद्ध पाठ्यक्रम नहीं है, बल्कि अलग अलग कठिनाई स्तरों वाले व्यावहारिक निर्माण कार्यों का संग्रह है। पुस्तक का केंद्र मेकर संस्कृति है, जिसमें जिज्ञासा, हाथों से सीखना, मरम्मत, पुनर्प्रयोग और खुले प्रयोग को महत्व दिया जाता है। परियोजनाओं की व्यापकता इसकी खासियत है, क्योंकि पाठक यांत्रिक बनावट, डिजिटल तकनीक और घरेलू समाधान जैसे अलग क्षेत्रों में प्रवेश कर सकता है। इसलिए इसका उपयोग केवल निर्देश पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि अपनी रुचि, उपलब्ध साधनों और कौशल के अनुसार अगला प्रयोग चुनने के लिए भी किया जा सकता है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, मेक पत्रिका के शुरुआती दौर का प्रतिनिधि परियोजना संकलन। पुस्तक की मूल संरचना ही उसका महत्वपूर्ण विचार है। यह मेक पत्रिका के आरंभिक 10 खंडों में प्रकाशित सामग्री में से चुनी गई 75 परियोजनाओं का संकलन है, इसलिए इसे किसी एक लेखक की निरंतर दलील के रूप में पढ़ना उचित नहीं होगा। इसकी उपयोगिता चयन में है, जो मेकर संस्कृति के शुरुआती उत्साह और उसकी विविध तकनीकी रुचियों का एक व्यावहारिक चित्र प्रस्तुत करता है। अलग अलग परियोजनाएं पाठक को यह दिखाती है कि निर्माण का दायरा केवल पेशेवर इंजीनियरिंग प्रयोगशाला तक सीमित नहीं है। घर, कार्यशाला और उपलब्ध पुर्जे भी सीखने के स्थान बन सकते हैं। संकलन का प्रारूप एक और लाभ देता है, पाठक को आरंभ से अंत तक एक ही विधि अपनाने की बाध्यता नहीं होती। वह अपनी रुचि के अनुरूप किसी परियोजना से प्रवेश कर सकता है और फिर संबंधित कौशलों की ओर बढ़ सकता है। साथ ही यह प्रारूप सीमा भी बनाता है, क्योंकि परियोजनाओं के बीच एक आधुनिक एकीकृत उपकरण सूची या क्रमिक प्रशिक्षण योजना की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। पुस्तक का वास्तविक मूल्य विचारों की चौड़ाई, निर्देशात्मक प्रेरणा और हाथों से करके समझने की संस्कृति को सामने लाने में है। दूसरा, हाथों से बनाना। तकनीक को समझने का सक्रिय तरीका। इस संग्रह के पीछे का स्पष्ट व्यावहारिक सिद्धांत है कि तकनीक को केवल उपभोक्ता की तरह उपयोग करना पर्याप्त नहीं है। जब पाठक किसी उपकरण, सर्किट, सामग्री या यांत्रिक व्यवस्था को बनाता, खोलता, जोड़ता या संशोधित करता है, तब वह उसके काम करने की सीमाओं और संभावनाओं को अधिक ठोस ढंग से समझता है। DIY परियोजना में निर्देशों का पालन एक प्रारंभिक चरण है, अंतिम लक्ष्य नहीं। वास्तविक सीख तब होती है जब माप, सामग्री, लागत, खराबी और अपेक्षित परिणाम के बीच संबंध दिखाई देने लगते हैं। इसी कारण पुस्तक की परियोजनाएं केवल मनोरंजनात्मक गतिविधियां नहीं मानी जानी चाहिए। वे समस्या को छोटे, जांचने योग्य चरणों में बांटने की आदत विकसित करती है। किसी निर्माण में विफलता आने पर पाठक को कारण खोजने, जोड़ जांचने, वैकल्पिक पुर्जा चुनने या डिजाइन बदलने की जरूरत पड़ती है। यह प्रक्रिया तकनीकी आत्मनिर्भरता का आधार है, फिर भी यह दृष्टि सावधानी मांगती है। बिजली, धारदार औजार, गर्मी या रसायनों से जुड़ी गतिविधियों में सुरक्षित कार्यस्थल, वयस्क निगरानी और स्थानीय सुरक्षा नियम अनिवार्य है। पुस्तक प्रयोगशीलता को प्रोत्साहित करती है, लापरवाही को नहीं। तीसरा, मरम्मत, पुनर्प्रयोग और उपभोक्ता वस्तुओं पर रचनात्मक नियंत्रण। मेक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हितार्थ यह है कि वस्तुएं केवल बंद डिब्बे नहीं हैं, जिन्हें खराब होने पर फेंक दिया जाए। किसी पुराने उपकरण, बची हुई सामग्री या सामान्य घरेलू वस्तु को नए काम में लेना डिजाइन संबंधी सोच को बदलता है। पुस्तक की परियोजना केंद्रित दुनिया में पुनर्प्रयोग केवल कम लागत का उपाय नहीं है, यह सामग्री की बनावट, पुर्जों की भूमिका और डिजाइन के विकल्पों पर ध्यान देने की विधि है। पाठक यह पूछना शुरू करता है कि किसी वस्तु को अलग तरीके से जोड़ा, सुधारा या किसी अन्य काम के लिए ढाला जा सकता है या नहीं। यह दृष्टिकोण खासकर उन लोगों के लिए उपयोगी है जो तकनीक को अधिक पारदर्शी बनाना चाहते हैं। तैयार उत्पाद में छिपे निर्णयों को देखकर वे अपनी जरूरत के अनुसार बदलाव की कल्पना कर सकते हैं, हालांकि हर वस्तु को खोलना या बदलना उचित नहीं होता। संरचनात्मक सुरक्षा, विद्युत जोखिम, स्वच्छता और उपकरण की वारंटी जैसी सीमाएं वास्तविक है। अतः पुस्तक से मिलने वाला बेहतर सबक यह नहीं कि हर चीज को तोड़कर देखा जाए, बल्कि यह कि उपयोग, मरम्मत और पुनर्निर्माण के बीच सोच समझ कर चुनाव किया जाए। यही रचनात्मक नियंत्रण को जिम्मेदार व्यवहार से जोड़ता है। चौथा, अलग कौशलों को जोड़ने वाली भविष्यक मेकर सोच। द बेस्ट ऑफ मेक की परियोजनाओं का दायरा इसके पाठ की अनुभव को भविष्यक बनाता है। मेकर कार्य में अक्सर केवल एक कौशल पर्याप्त नहीं होता। एक उपयोगी वस्तु बनाने के लिए मापन, कटाई, जोड़ने, मूल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर संबंधी समझ, दृश्य डिजाइन और परीक्षण जैसे काम एक साथ आ सकते हैं। पुस्तक का संग्रह रूप इस पारस्परिकता को रेखांकित करता है। पाठक किसी एक परियोजना के लिए आया हो, फिर भी उसे ऐसे तरीकों का सामना हो सकता है जो दूसरे क्षेत्र में लागू होते हैं। उदाहरण के लिए, निर्माण की योजना बनाना, चरणों का दस्तावेजीकरण करना और परिणाम को सुधारना यांत्रिक तथा डिजिटल दोनों तरह के कामों में उपयोगी आदतें हैं। यह दृष्टि शुरुआती पाठक के लिए चुनौतीपूर्ण भी हो सकती है, क्योंकि हर परियोजना समान पूर्व ज्ञान नहीं मानती। इसलिए सबसे प्रभावी तरीका है कि पाठक कठिनाई, उपलब्ध औजार और जोखिम को देखकर छोटी परियोजनाओं से शुरुआत करे। सफल बनाने के लिए निर्देशों को अपने संसाधनों के अनुसार ढालना पड़ सकता है। पुस्तक का संदेश विशेषज्ञता का विकल्प देना नहीं है, बल्कि यह दिखाना है कि विभिन्न क्षेत्रों की बुनियादी समझ मिलकर अधिक कल्पनाशील और उपयोगी निर्माण कार्य संभव बनाती है। अंत में, परियोजनाओं से आगे साझा प्रयोग और मेकर समुदाय की भूमिका, पुस्तक को केवल व्यक्तिगत शौक की सूची मानना अधूरा होगा। यह उस मेक पत्रिका परंपरा से आती है जिसने तकनीक और शिल्प के आसपास उत्साही लोगों का समुदाय बनाया। परियोजना प्रकाशित करना अपने आप में ज्ञान साझा करने का कार्य है। इसमें लेखक अपने तरीके, सामग्री और परिणाम को इतना स्पष्ट बनाने का प्रयास करता है कि दूसरा व्यक्ति उसे दोहरा, बदल या आगे विकसित कर सके। इस अर्थ में पुस्तक का सामाजिक मूल्य निर्देशों के हस्तांतरण में है। पाठक किसी डिजाइन को अंतिम और अछूता समाधान मानने के बजाय एक आरंभिक नमूने की तरह देख सकता है। वह अपने स्थानीय साधनों, बजट और आवश्यकता के आधार पर बदलाव कर सकता है। साझा निर्माण संस्कृति में गलतियों का भी महत्व है, क्योंकि वे बताती है कि कौन सा चरण अस्पष्ट था और किस समाधान को सुधारा जा सकता है। आज के पाठक को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पुस्तक 2007 में प्रकाशित हुई थी। कुछ तकनीकी घटक, सॉफ्टवेयर या उपलब्ध पुर्जे अब पुराने हो सकते हैं। फिर भी दस्तावेज पढ़ने, विकल्प खोजने, सुरक्षा जांचने और अपने संशोधनों को दर्ज करने की सामुदायिक आदत आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। यही पुस्तक को समयबद्ध तकनीकी विवरण से अधिक स्थायी बनाती है। निष्कर्ष में, यह पुस्तक उन पाठकों के लिए सबसे उपयुक्त है जो तकनीक और शिल्प को देखने भर के बजाय हाथों से आजमाना चाहते हैं। शुरुआती मेकर, विद्यार्थी, शिक्षक, हॉबी कार्यशाला चलाने वाले लोग और परिवार के साथ रचनात्मक गतिविधियां खोजने वाले पाठक इससे विशेष लाभ ले सकते हैं। अनुभवी तकनीकी पाठक भी इसे विचारों के स्रोत और मेक पत्रिका के आरंभिक मेकर आंदोलन के दस्तावेज के रूप में पढ़ सकते हैं। इसका व्यावहारिक लाभ किसी एक विशेषज्ञ कौशल में प्रमाणन देना नहीं, बल्कि निर्माण की प्रक्रिया से परिचय कराना है। पाठक को सामग्री चुनने, निर्देशों को समझने, जोखिम पहचानने, छोटी असफलताओं से सीखने और डिजाइन में बदलाव करने का अभ्यास मिलता है। बौद्धिक स्तर पर यह उपभोक्ता केंद्रित तकनीकी दृष्टि के विकल्प के रूप में काम करती है। यह प्रश्न उठाती है कि क्या हम वस्तुओं को केवल खरीदते और इस्तेमाल करते हैं, या उनके काम करने के तरीके को समझकर उनमें भागीदारी भी कर सकते हैं। समान DIY पुस्तकों की तुलना में इसकी अलग पहचान इसके संकलनात्मक विस्तार में है। एक ही विषय की परियोजनाओं पर सीमित रहने के बजाय यह मेक पत्रिका की विविध रुचियों को साथ रखती है। हालांकि प्रकाशित तकनीकी विवरणों को वर्तमान उपकरणों और सुरक्षा मानकों के संदर्भ में जांचना जरूरी है। जो पाठक पूर्ण पाठ्यक्रम के बजाय अनेक संभावित प्रयोगों, विचारों और निर्माण विधियों का विश्वसनीय प्रवेश द्वार चाहते हैं, उनके लिए यह संग्रह उपयोगी और विशिष्ट है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं मार्क फ्राउनफेल्डर, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।